आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि नबी यिर्मयाह के साथ बुरा व्यवहार होता है। ईश्वर नबी यिर्मयाह को भेजते हैं इसराइलियों को अपना वचन सुनाने के लिए, लेकिन जब नबी यिर्मयाह वचन सुनाने लगते हैं तो नबी के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। सुसमाचार में हम सुनेंगे कि नाजरत में प्रवचन देने वाले यीशु के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में हम यह अक्सर देखा करते हैं कि लोग सुसमाचार सुनाने वालों के विरुद्ध खड़े होते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि नबी एलियस के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं, यहाँ तक कि रानी जेसबेल उसको मार डालने की कोशिश करती है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि आराम के राजा एक बहुत बड़ी सेना को भेजकर नबी एलीशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार पुराने व्यवस्थान में हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग विशेष रीति से नबी लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हैं या प्रभु के कार्य करते हैं तो लोग उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को भेजा था सुसमाचार सुनाने के लिए, अपना अनुदेश देखकर भेजा था, उस समय प्रभु यीशु ने उनको ये भी समझाया था कि लोग उनका कभी कभी स्वागत नहीं करेंगे, लोग उनके विरुद्ध अत्याचार करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ उनके बाजारों में जाकर कहना, अपने पैरों में लगी हुई धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में हम देखते हैं सुसमाचार सुनाने वाले स्टेफनुस को पकड़कर लोग पत्थर मारकर उनकी हत्या करते हैं। अध्याय 12 में हम देखते हैं कि पेत्रुस के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं, उसको हथकड़ियाँ पहनाकर बंदी गृह में डाल देते हैं। अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलस को लोग गिरफ्तार करते हैं, उनके कपड़े उतरवा कर कोड़े लगाकर खूब पिटवा कर बंदी गृह में डाल देते हैं। हम जानते हैं कि हेरोद ने याकूब को मार डाला था। इस प्रकार सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं, उनके अत्याचार होते हैं, उनके विरुद्ध लोग अत्याचार करते हैं। अब प्रभु को ये मालूम था कि ऐसा होगा क्योंकि प्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर में भाग जाओ। इस प्रकार जब अत्याचार होता है हमें हमारा काम बंद नहीं करना चाहिए, सुसमाचार सुनाने का काम बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर तुम्हें एक जगह पर अत्याचार सहना पड़ता है तो दूसरे जगह पर जाकर सुसमाचार फिर से सुनाओ। और ये ऐसे करने वाले भी बचेंगे नहीं, इसके बारे में भी प्रभु संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 में कहते हैं धिकार तुम लोगों को क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनाते हो। इसीलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने ये कहा मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे, कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया, हाबिल के रक्त से लेकर जकरिया के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। एक तरफ अत्याचार सहन करने वाले सुसमाचार प्रचारक और दूसरी तरफ अत्याचार करने वाले कुकर्मी। अत्याचार सहन करने वाले सुसमाचार के वाहकों को, सुसमाचार के प्रचारकों को ईश्वर संभालते हैं, उनको ईश्वर आशीष देते हैं। जितने भी नबियों के बारे में और प्रेरितों के बारे में मैंने कहा, उन सब के अत्याचार के समय ईश्वर उनके साथ थे, ईश्वर उनकी मदद करते थे, ईश्वर की आशीष उन्हें खूब प्राप्त थी। और जितने भी लोगों ने इन लोगों के, इन नबियों और प्रेरितों के विरुद्ध कार्य किया, उन सबको अपने करने का दंड भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर भी प्रभु उनको चेतावनी देते हैं कि इस पीढ़ी को उसका हिसाब चुकाना होगा। प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार के वाहक कितने अच्छे कार्य करते हैं, यहाँ तक कि पवित्र ग्रंथ कहता है सुसमाचार सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर हैं, सुसमाचार सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर हैं, उनका चरण पड़ना चाहिए। अगर सुसमाचार सुनाने वालों का चरण स्पर्श भी हमारे घर के आंगन में है तो हमें आशीष मिलेगी। सुसमाचार सुनाने वालों के चरण स्पर्श से हमारे गांव और शहर धन्य बन जाते हैं, क्योंकि जिस सुसमाचार का भी प्रचारक बनते हैं उससे ही संसार की मुक्ति होती है। वो सुसमाचार उस मुक्तिदाता के बारे में है जिसका नाम सुनकर संसार भर के लोग घुटने टेकते हैं। साथ साथ ऐसा कभी भी ना हो कि हम सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो आइए इस मिसा बलिदान में हम ईश्वर से विनती करें कि हमें सुसमाचार सुनाने की निडर होकर निर्भीकता से समय और असमय सुसमाचार सुनाने की कृपा प्राप्त हो।